अलंकार विधान का शेष अंश, पृष्ठ 102। 4. गुण का अनुभव तीव्र करने में सहायक अलंकार। देखिए इस व्यतिरेक की सहायता से संतों का स्वभाव किस सफाई के साथ औरों से अलग करके दिखाया गया है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पै कहई न जाना। निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता। संतों और असंतों के बीच के भेद को थोड़ा कहते कहते व्याघात द्वारा कितना बड़ा कह डाला है, जरा यह भी देखिए। बंदो संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरित एक प्राण हरि लेही। इस इतने बड़े भेद को थोड़ा कहने वाले का हृदय कितना बड़ा होगा। कवि लोग अपनी चतुराई दिखाने के लिए श्लेष कूट प्रहेलिका आदि लाया करते हैं, पर परम भाव गोस्वामी जी ने ऐसा कहीं नहीं किया। एक स्थान पर ऐसी युक्ति पटुता है, पर वह आख्यान गत प्राप्त का चातुर्य दिखाने के लिए ही है। लक्ष्मण से सुपर्णखा के नाक कान काटने के लिए राम इस तरह इशारा करते हैं। वेद नाम कही अग्रिन खंडी आकाश, पठ्य सुपन खाही लखन के पास। कोष्ठक में वेद श्रुति कान आकाश स्वर्ग नाक। गोस्वामी जी की रचना में बहुत से स्थल ऐसे भी हैं जहाँ यह निश्चित करने में गड़बड़ी हो सकती है कि यहाँ अलंकार है या भाव। इसकी संभावना वही होगी जहाँ स्मरण संदेह और भ्रांति का वर्णन होगा। स्मरण का यह उदाहरण लीजिए, बीच बास करी जम नहीं आए, निरखी नीर लोचन जल छाए। इसे न विशुद्ध अलंकार ही कह सकते हैं न भाव ही। उपमेय और उपमान राम के शरीर यमुना के जल के सदृश की ओर ध्यान देते हैं तो स्मरण अलंकार रहता है। और पृष्ठ 103। जब अश्रु सात्विक की ओर देखते हैं तो स्मरण संचारी भाव निश्चित होता है। सब पूछिए तो इसमें दोनों है, पर इसमें संदेह नहीं कि भाव का उद्रेक अत्यंत स्वाभाविक है और यहाँ वही प्रधान है जैसा कि लोचन जल छाए से प्रकट होता है। विशुद्ध अलंकार तो वही कहा जा सकता है जहाँ सदृश वस्तु लाने में कवि का उद्देश्य केवल रूप गुण या क्रिया का उत्कर्ष दिखाना रहता है। अलंकार का स्मरण प्रायः वास्तविक नहीं होता, रूप गुण आदि के उत्कर्ष प्रदर्शन का एक कौशल मात्र होता है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि स्मरण भाव केवल सदृश से ही नहीं होता, संबंधी वस्तु से भी होता है। शुद्ध स्मरण भाव का यह उदाहरण बहुत ही अच्छा है। जननी निरखतिपान धनु हिया, बार बार उर नयनी लावती प्रभुजी की ललित पनहिया। अब भ्रम का एक ऐसा ही उदाहरण लीजिए। सीता जी अपने जलने के लिए अशोक से अंगार मांग रही थी। इतने में हनुमान ने पेड़ के ऊपर से राम की मनोहर मुद्रिका गिराई और जानी अशोक अंगार सोए हरसी उठी कर गह्यो। इसी प्रकार जहाँ उत्तरकांड में अयोध्या की विभूति का वर्णन है वहाँ कहा गया है, मनिमुख मेली डारिकपि देही। इन दोनों उदाहरणों में भ्रम अलंकार नहीं है। अलंकार में भ्रम के विषय की विशेषता होती है, भ्रांति की विशेषता में तो बात पागलों का भ्रम भी अलंकार हो जाएगा। सीता को जो भ्रम है वह विरह की विह्वलता के कारण, और बंदरों का जो भ्रम है वह पशुत्व के कारण। इस प्रकार का भ्रम अलंकार नहीं, यह बात आचार्यों ने स्पष्ट कर दी है। मर्म प्रहार कृत चित्त विक्षेप विरहादि कृतोन्मादा दृजयंत्र भ्रांतेस च नालंकारत्व डैश उद्योतकार। संदेह के संबंध में भी यही बात समझिए तो जो ऊपर बात कही गई है तीनों में सादृश्य आवश्यक है। संदेह तो अलंकार तभी होगा जब उसको लाने का मुख्य उद्देश्य रूप गुण क्रिया का उत्कर्ष कोष्टक में अपकर्ष भी सूचित करना होगा। ऐसा संदेह वास्तविक भी हो सकता है पर वहाँ अलंकारत्व कुछ दबा सा रहेगा। जैसे कि मैनाक की खगपति होई में जो संदेह है वह कवि के प्रबंध कौशल के कारण वास्तविक भी है तथा आकार की दीर्घता और वेग की तीव्रता भी सूचित करता है। पर नीचे लिखा उदाहरण लीजिए तो उसमें कुछ भी अलंकारत्व नहीं है। कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रति अति होई, कि तुम राम दिन अनुरागी आए मोहि करन बड़ भागी। अलंकार का विषय समाप्त करने के पहले दो चार बातें कह देना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि सब अलंकार आने पर भी गोस्वामी जी की रचना कहीं ऐसी नहीं कि पहले अलंकार का पता लगाया जाए तब अर्थ खुले। जो अलंकार का नाम तक नहीं जानते वे भी अर्थ ग्रहण करके पूरा आनंद उठाते हैं। पृष्ठ 104। एक बिहारी है कि पहले नायिका का पता लगाइए फिर अलंकार निश्चित कीजिए, और तब दोनों की सहायता से प्रसंग की उहा कीजिए, तब जाकर कहीं अर्थ से भेंट हो। गोस्वामी जी की इस अद्भुत विशेषता का कारण है उनकी अपूर्व प्रबंध पटुता, जिसके बल से उन्होंने अपनी प्रबंध धारा के साथ अधिकतर प्रकरण प्राप्त वस्तुओं को ही लेकर अलंकारों को इस सफाई से मिलाया कि जोड़ मालूम नहीं पड़ता। ध्यान देने की दूसरी बात यह है कि गोस्वामी जी श्लेष यमक मुद्रा आदि खिलवाड़ों के फेर में एक तरह से बिल्कुल नहीं पड़ते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि शब्दालंकार का सौंदर्य उनमें नहीं, ओज माधुर्य आदि का विधान करने वाले वर्ण विन्यास का आश्रय उन्होंने लिया है। उनकी शब्द रचना सौंदर्यपूर्ण है। अनुप्रास के तो वे बादशाह थे। अनुप्रास किस ढंग से लाना चाहिए उनसे यह सीखकर यदि बहुत से पिछले फुटकरिये कवियों ने अपने कवित्त सवैये लिखे होते तो उनमें वह भद्दापन और अर्थ न्यूनता न आने पाती। तुलसी की रचना में कहीं कहीं एक ही वर्ण की आवृत्ति सारे चरण में यहाँ से वहाँ तक चली गई है, पर प्रसंग बाह्य या भर्ती का एक शब्द भी नहीं। दो नमूने बहुत होंगे। क जग जाचिए को न जाचिए जो, जिए जाचिए जानकी जान ही रे, जही जाचत जाचकता जरी जाई जो जारती जोर जना नहीं रे। ख खल परिहास हो ही हित मोरा, काक कही कल कंठ कठोरा। और उदाहरण ढूंढ लीजिए, कुछ भी कष्ट न होगा, जहाँ ढूंढिएगा वही मिलेंगे। श्लेष परिसंख्या जैसे कृत्रिमता लाने वाले अलंकारों का व्यवहार भी इनकी रचनाओं में नहीं मिलता। इस प्रसिद्ध उदाहरण को छोड़ हम समझते हैं परिसंख्या का शायद ही कोई और उदाहरण इनकी रचनाओं भर में मिले। दंड जनित कर श्रेय जह नर्तक नित्य समाज, जितहु मन ही अस सुनिए जग राम चंद्र के राज। शब्द श्लेष के उदाहरण भी ढूंढने पर चार ही पांच जगह मिलते हैं, जैसे क साधु चरित शुभ सरिस कपासु, नीरस बीसद गुणमय फल जासु। ख बहुरी सकसम बिनवो तेहि, संतत सुरा नीक हित जेहि। ग रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुख धारी। घ सेवा अनुरूप फल देत भूप कूप ज्यो, बिहुने गुण पथिक पियासे जात पथ के। इस प्रकार यमक का व्यवहार भी कम ही मिलता है, जैसे काढ़ी कृपान कृपा न कहो पितु, काल कराल बिलोकी न भागे। राम जहाँ सब ठाऊँ है खम में, हाँ सुनी हाक नृ के हरि जागे। गोस्वामी जी को रामचरित की ओर सब प्रकार के लोगों को आकर्षित करना था, जो जिस रुचि से आकर्षित हो उसी से ही सही। इसमें उन्होंने अलंकार की भद्दी रुचि रखने वालों को भी निराश नहीं किया, और इस तरह के भी कुछ अलंकार कहे जिस तरह का विनय पत्रिका में यह सांग रूपक है। पृष्ठ 105। सेये सहित स्नेह देह भरी, काम धेनु कलिकासी, मर्जादा चहु ओर चरण बर सेवत सुरपुर बासी। तीरथ सब शुभ अंग रोम शिवलिंग अमित अविनाशी, अंतर अयन अयन भल थल फल बच्छ वेद विश्वासी। गलकम्बल बरना बीभाति, जून लूम लसती सरितासी। लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन कर घंट घंटासी। कहिए काशी की इन वस्तुओं का सींग पूछ गलकम्बल आदि के साथ कहाँ तक सादृश्य है। अनुगामी धर्म, वस्तु प्रतिवस्तु धर्म, उपचरित धर्म, बिंब प्रतिबिंब रूप आदि ढूंढने से कहाँ तक मिल सकते हैं। घंटा और करण घंटा में तो केवल सद्धात्मक सादृश्य ही है। इसी प्रकार विनय पत्रिका में अर्धनारीश्वर शिव को बसंत बनाया है, और गीतावली में चित्रकूट की वनस्थली को होली का स्वांग। पर फिर भी यही कहना पड़ता है कि इसमें गोस्वामी जी का दोष नहीं, यह एक वर्ग विशेष की रुचि का प्रसाद है। इतनी विस्तृत रचना के भीतर दो चार ऐसे स्थलों से उनके रुचि सौंदर्य में अणु मात्र भी संदेह नहीं उत्पन्न हो सकता।